ఓం శాంతి. దేవతాం కా గాయన్ హై, ఇచ్ఛా మాత్రం అవిద్య. హమారా లక్ష్య హై దేవతా బన్నా. తో వో దేవతాయ సంస్కార్ యహాం ధారణ కర్నే హై. बाबा, हम बच्चों को टाइटल देते हैं बेहद के सन्यासी. सारी पुरानी दुनिया का बुद्धि से सन्यास करना है. और तपस्या के लिए वैराग्य वृत्ति चाहिए. वैराग्य है तो त्याग, तपस्या, सेवा सब सहज हो जाता है. परंतु हम बाबा के बच्चे बने और हमें मालूम है कि कल हम जब शरीर छोड़ेंगे, सत्युग में जाएंगे, और सत्युग में हमारे पास सब कुछ होगा, परंतु पुराने संस्कार आदत अनुसार कुछ न कुछ इच्छा रहती है. खान पान की इच्छा रहती है, जो हमें अच्छी चीज लगती है, बहुत समय से खाई नहीं है तो इच्छा रहती है पानी पूरी खाएं, भेल पूरी खाएं, दही वड़ा खाएं, आइसक्रीम खाएं, गुलाब जामुन, समोसा, कुछ न कुछ. दादी प्रकाशवाणी एग्जाम्पल देती थी कि यदि हमको पूरा वैराग्य नहीं है तो कैसे इच्छा होती है और इच्छा के वश एक यज्ञ की बहन थी पुरानी, बंबई में एडमिट हुई थी हॉस्पिटल में, और दादी खाना पहुंचाती थी. एक दिन कहती है मुझे भेल पूरी खानी है. दादी ने कहा ठीक है, हम कल बना के लाएंगे, आज तो मैं नहीं लाई हूं. नहीं, मुझे आज ही खाना है. और उसके लौकिक संबंधी वहां थे उसी समय, कहे उसको खिलाना चाहिए, नहीं तो यदि शरीर छोड़ दिया तो उसकी इच्छा अधूरी रह जाएंगी. तो बाजार से लाकर भेल पूरी उन्होंने खिलाए. तो जो सारी जिंदगी नियम पालन किया था वो हॉस्पिटल में नियम तोड़ा। किसी को घूमने फिरने की इच्छा होती है, पैसा है, सोचते हैं जीवन में एक बारी तो विदेश जाना चाहिए, लंदन अमेरिका मशहूर है, जरूर हम चक्कर लगाएं। और कई विंग्स वाले भी प्रोग्राम बनाते हैं ना, उनके आपस में मीटिंग होती है ना, तो नए नए स्थान पर मीटिंग रखते हैं, कभी मैसूर, कभी श्रीनगर, कभी कहाँ कहाँ, जगन्नाथपुरी। तो क्या है, घूमने फिरने की भी इच्छा होती है। जब बाबा को हम कहाँ बुलाते थे कि बाबा आओ, तो ब्रह्मा बाबा कहते थे पुरानी दुनिया में क्या है, ये तो जंगल है, सब बंदर है, आकर क्या देखना है। फिर कईयों को मोटरबाइक का शौक होता है, तो क्या करते हैं, देखते रहते हैं कि कौन सा नया मॉडल आया है। किसको कार का शौक है, कहते हैं पुरानी कार अभी अच्छी नहीं है तो नई चाहिए। और कईयों को इच्छा रहती है हमको बड़ा मकान चाहिए। हमारे फ्रेंड्स का, हमारे संबंधी का बहुत अच्छा मकान है, चलो पुराना मकान बेच के नया मकान खरीदें। परंतु हमारी बुद्धि में सत्य क्लियर होना चाहिए। कल जाकर हम सत्युग में हमारे दरवाजे पर विमान खड़े होंगे, यहाँ की मोटर बाइक मोटर क्या है, वहाँ हमारे पास महल होंगे बड़े बड़े सुंदर सुवर्ण के, हीरे रतन जड़ित। यहाँ के मकान क्या है इसकी भेंट में, किसी को खास गृहस्थी है तो क्या है, फंक्शन वगैरह में आना जाना होता है क्या करेंगे? फंक्शन में, नया फंक्शन में जाना है, नया वस्त्र खरीदेंगे, क्योंकि पैसा है, समझेंगे क्यों ना हम कंपटीशन करें। और दिवाली आई, घर का डेकोरेशन करना है, नए अलंकार खरीदने हैं, नया फर्नीचर खरीदना है, भूल जाते हैं सत्युग में हमारा रोज नया श्रृंगार होगा। यहां बाबा कहते हैं आप वनवास में हो, चत्ती वाले पुराने कपड़े पहन रहे हैं, ससुर घर में सब नए मिलेंगे, तो इसलिए जितना सत्युगी पिक्चर हमारी बुद्धि में क्लियर होगा ना, तो ये पुरानी दुनिया की चीजें क्या है, टेम्पररी। आज जो मॉडर्न ड्रेस है, मोटर बाइक है, कार है, थोड़े साल में पुरानी हो जाएंगे, तो फिर नया खरीदने की इच्छा होंगी। तो इसलिए हमें याद रखना है कौन है हम, बेहद के सन्यासी हैं। हमें पुरानी दुनिया से बिल्कुल वैराग्य हो। पुरानी दुनिया का जो शो पंप है ज्यादा नहीं रहता है। रोज नई नई फैशन आते जाएंगे। और जो ड्रेस हमने कुछ समय पहले खरीदा था उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, वो पुराना हो। जब वैराग्य होगा, इच्छा नहीं होंगी, तो ये देवताई संस्कार हमें यहां ही धारण करने हैं। और जितना हम धारण करेंगे तो क्या होगा, वहां तो कोई इच्छा रहेंगी ही नहीं, सब कुछ प्राप्त होगा। 36 प्रकार का रोज भोजन मिलेगा, तो इसलिए हमारा ताना माना धना संकल्प समय हमें इसमें नहीं गंवाना है कि देखना है कि क्या नई फैशन है। फिर क्या होगा, किसी ने नए फैशन का कपड़ा पहना है, पूछेंगे कहाँ से लिया, कितने में लिया, और नेचुरली है नया खरीदने के लिए पैसा भी चाहिए, और लोभ को कोई थोब नहीं, कभी संतुष्ट नहीं रहेंगे लोभी। तो इच्छा ये भी सूक्ष्म लोभ है, इसलिए देखना है कि हम न उनों से नए वैभव से आकर्षित हो, न उसको प्राप्त करने की हमारे कोई इच्छा हो। ओम शांति।
ओम शांति। देखो दीदी जी हमारे लिए कितना समय दे रहे हैं, हम सबके लिए सुबह से शाम तक कितना बिजी होने के बाद भी, तो भी हमारे दीदी जी का भाग्य है कि सारे जो आदि रतन है उनसे दीदी से मिलना हुआ, उनकी पालना मिली, मम्मा बाबा से लेके जो भी दादियां है उनके साथ बहुत सारे सेवाओं के कारण बातचीत होती रही, प्रेरणा मिलती रही, और ऐसे आदि रत्नों की पालना लेते लेते दीदी भी हमारे एक विशेष रत्न बन गई है। तो ये जो मास है किसका मास है, हा? किसका? प्रकाशमणि दादी का है ना। तो हम दीदी से कुछ क्वेश्चन करें दादी के बारे में, हा? क्योंकि दादी की तो बहुत पालना ली है, तो ऐसे महान विभूति की पालना ली है दीदी जी ने। तो दीदी जी, प्रकाशमणि दादी के साथ आपकी पहली मुलाकात कब कैसी हुई, और दादी से आपने मतलब क्या प्रेरणा मिली दादी के द्वारा आपको?
मैं ज्ञान में बंबई में आई 62 में, 64 में दादी प्रकाशमणि को बाबा ने पटना से बंबई भेजा, और दादी निर्मल शांता को कलकत्ता भेजा। तो 64 में रमेश भाई पहली प्रदर्शनी मना रहे थे, कार्टून ही बनाया था फर्स्ट प्रदर्शनी में बंबई में। तो दादी प्रकाशमणि ने भी उनमें सहयोग दिया। तो 64 से 2007 तक दादी जी का संपर्क रहा और पालना भी मिले। दादी जी एक कुशल एडमिनिस्ट्रेटर थे। बाबा को मम्मा को उन्होंने फॉलो किया, उनको यज्ञ में मुंडी मम्मा कहते थे, थ्री क्वार्टर मम्मा, मतलब माँ के गुण उनमें थे। और उनका सभी दादियों से अच्छा प्यार था, क्योंकि बम्बई में पुष्प शांता दादी, रतन मोहिनी दादी, ब्रजेंद्रा दादी, शैलेंद्रा दादी आदि आदि सब दादियाँ थी। तो जब बाबा अव्यक्त हुए, मम्मा ने जब शरीर छोड़ा, तो बाबा ने बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी को मधुबन में रखा और उन्होंने मम्मा की ड्यूटी संभाली। फिर जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुआ, तो अव्यक्त बाप दादा ने दीदी दादी को जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनाया और दोनों ने मिलकर यज्ञ बहुत अच्छी रीत से चलाया, वृद्धि होती गई। क्योंकि जब ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा, विशेष सिंधी कम्युनिटी ने समझा, अभी तो ओम मंडली खत्म हो जाएंगी, दो बहनें वो कैसे मिलकर काम करेंगे। परंतु दीदी दादी दो शरीर थे, एक आत्मा, अर्थात इतना मिलजुल के काम करते थे, जो एक ने कहा दूसरे ने मानी। और दादी महाराष्ट्र और साउथ इंडिया का विशेष ध्यान देती थी और बड़ी दीदी विशेष दिल्ली और नॉर्थ इंडिया का ध्यान देती थी। तो जब कोई दादी से पूछने आता था ना, तो दादी क्या करती थी, यदि दिल्ली तरफ का कोई होता था या नॉर्थ का होता था, कहता था मैं सोच के कल बताऊंगी। फिर दीदी जी से राय करके दूसरे दिन जवाब देती थी। ऐसे नहीं कि क्या होता है, ब्राह्मण बहुत चालाक होता है, हाँ, अलग अलग लोगों के पास जाकर राय पूछेंगे, फिर जिसकी राय अच्छी लगेंगी कहेंगे दीदी ने मुझे ये कहा, दादी ने मुझे ये कहा, निर्वर भाई ने मुझे ये कहा। तो इसलिए दोनों ने मिलकर के यज्ञ को ऐसा चलाया जो ब्रह्मा बाबा के टाइम 120 सेवा केंद्र था। जब दादी ने शरीर छोड़ा, विश्व के 124 देशों में सेवा केंद्र खुल गया। और यूएन में भाषण भी किया दादी ने, और यहां 83 से कॉन्फ्रेंस होती थी, जिसमें कई वीआईपी आते थे और विशेष दादी ने संत महात्मा साधुओं को एक बारी यहां कॉन्फ्रेंस में बुलाया और सबको खुश करना है क्योंकि सब चाहते हैं हमारे फर्स्ट रो में सीट हो। तो दादी ने ओम शांति भवन का स्टेज बढ़ाया ताकि सबको फर्स्ट रो में बिठा और सभी के कमरे में जाकर हाल चाल पूछती थी, सब ठीक है, क्या है, कैसे है। तो पहले तो वो लोग मांग करते थे कि हम अपने कमरे में खाना बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पर जब सन्यासियों ने देखा कि इन्हों का किचन तो बहुत क्लीन है और भंडारे में बहुत अच्छी रीत से योग में खाना पकाते हैं, फिर सभी की मांग पूरी हो गई। जब 60s अर्ली 70s में हम लोग सन्यासियों को राखी बांधते थे ना, तो कहते थे हमने अपनी लौकिक बहनों को तो छोड़ दिया, अभी हम आपको क्यों बहन बनाएंगे। पर ये सम्मेलन के बाद और सम्मेलन में भी कहते रहे दादी माँ दादी माँ। और एक सन्यासी ने कहा, दादी कभी भी जरूरत हो मुझे बुलाना, मैं मेरे 60,000 शिष्यों को आपकी सेवा में हाजिर कर दूंगा। और जो पहले कभी ब्रह्मा कुमारियों से मिलना भी नहीं चाहते थे कि ये ब्रह्मा कुमारियां अपना ज्ञान सुनाएंगे, उनका ज्ञान शास्त्रों के विरुद्ध है, उन्हों की दादी ने और प्रेम बहन देहरादून वाले इतनी अच्छी सेवा की, इतने अच्छी इनकी खातरी की, जो सभी कहने लगे हमको कभी मधुबन में बुलाते हैं। तो इसी बीच से दादी ने बहुत अच्छी सेवा की और मधुबन में भी क्या होता था, कभी कभी मुरली के समय दादी को प्रेरणा आती थी, सबको गरम गरम हलवा खिलाए, ठंडी के दिन है ना, तो मुरली में ही भोली दादी को डायरेक्शन देती थी, भोली दादी मुरली के बाद सबको गरम गरम हलवा खिलाना। तो भोली दादी क्या करती थी, हलवा बनाकर ओम शांति भवन के बाहर सिगड़ी पर गरम गरम हलवा खिलाया, कभी गरम गरम पकौड़ा खिलाया, कभी कभी मुरली में ख्याल आता था आज इन्हों को पीस पार्क ले जाओ, तो उसी समय डायरेक्शन देती थी कि मुरली के बाद हम पीस पार्क में जाएंगे, नाश्ता वहां करेंगे, और मुरली में डायरेक्शन दे देती थी। तो मुरली के बाद सब जाते थे और पीस पार्क में खेलना कूदना और गरम गरम नाश्ता करना। और पीस पार्क में सबके साथ खेलती थी। और एक बार मुझे याद है, वो जो कहते हैं ना, आंख पर पट्टी बांध कर दूर मटका रखते हैं,
मटका तोड़ना,
वो भी गेम खेली दादी ने करके, मटका नहीं फोड़ सके पर खेली जरूर। और पीस पार्क में भी बैडमिंटन है, क्रिकेट है, खेलती थी। और पीस पार्क उतना डेवलप भी नहीं हुआ था, बाद में डेवलप हो गया। और एक बार हमें नखी लेक पर मुरली सुनाने ले गई, तो ऐसे वैरायटी करती थी और मुरली इतना इनका इंटरेस्टिंग था, कोई मधुबन वासे मिस नहीं करते थे, दौड़ दौड़ के पहुंच जाते थे। और दीदी भी ख्याल करती थी कि कोई मुरली मिस ना करे। कभी कभी किचन में मुरली के टाइम चक्कर लगाकर देखती थी, कौन मुरली मिस किया है, किचन में है या इधर उधर है। तो दादी ब्रह्मा बाबा की भी उनकी राय लेते थे। तो मुंबई में रमेश भाई ने प्रपोजल दिया वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट के, जो हमारे पास ट्रस्ट में पैसा आवे उसका टैक्स ना लगे। फिर ट्रस्टी को कौन ट्रस्टी नियुक्त करे, तो दीदी दादी ने सारे नाम फाइनल किए, जिसमें रमेश भाई, उनकी माताजी शांता बहन, मैं और शील दादी जो मुंबई में थी, चारों को ट्रस्टी बनाया बाबा ने। फिर 71 में इंटरनेशनल योगा कॉन्फ्रेंस थी, तो उस कॉन्फ्रेंस में मैं डॉक्टर थी, तो इसलिए मुझे भी निमंत्रण मिला भाषण करने के लिए। मैं थी, जगदीश भाई था, रमेश भाई था, मोहिनी बहन न्यूयॉर्क वाली थी, रोजी बहन आदि, हम सभी जो इंग्लिश जानने वाले थे उन्हों को निमंत्रण दिया गया। तो वहाँ हमने कॉन्फ्रेंस अटेंड की, तो न्यूयॉर्क के एक योगी ने वहाँ कॉन्फ्रेंस में निमंत्रण दिया कि जनवरी 71 में यहाँ दिल्ली में कॉन्फ्रेंस थी और जुलाई में न्यूयॉर्क में कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, क्योंकि जुलाई मास वहाँ गर्मी का मास होता है। तो हम लोगों को निमंत्रण दिया। तो मधुबन में जब मैं गई, उस समय मैं बंबई में थी, तो मैंने दादी जी से पूछा, दादी इस कॉन्फ्रेंस में कौन जाने वाला है? तो दादी ने कहा, तुम जाएंगी? मैंने कहा हाँ, मेरे लौकिक पिता जब मैं मेडिसिन स्टडी करती थी तो उनकी इच्छा थी कि मैं विदेश जाकर पोस्ट ग्रेजुएट करूं, पर मेरी इच्छा नहीं थी पोस्ट ग्रेजुएट करने की, तो मैं गई नहीं। अब मैं जाऊंगी तो जरूर वो खर्च करेगा। फिर दीदी दादी ने हमारा नाम भी सिलेक्ट किया तो फर्स्ट ग्रुप में हम भी गए। और फिर क्या हुआ, तब से विदेश सेवा में लग गई। लंदन में फिर दादी जानकी आई तो जयंती बहन भी आ गई, तो फिर मुझे लंदन से छुट्टी मिल गई। और लंदन का एक भाई ऑस्ट्रेलिया जा रहा था सेवार्थ, तो उसने मांग की दादी मेरे साथ कोई अंग्रेजी जाने वाली बहन को भेजो। और उसी समय मोहिनी बहन को कनाडा का निमंत्रण मिला, तो दादी ने हमको पूछा कहाँ जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया या कनाडा। उस समय कोई ज्योग्राफी वगैरह का मुझे ज्ञान नहीं था, पर मैंने कहा मोहिनी बहन जाती है उसको जाने दो, मैं ऑस्ट्रेलिया जाएंगी, तो मुझे वहां भेजा। और ऑस्ट्रेलिया से फिर जब मैं निकल रही थी, न्यूजीलैंड फीजी जाने का प्रोग्राम बना, जहां कोई ब्राह्मण नहीं, सेंटर नहीं, कुछ नहीं, पर हमने संपर्क करके वहां का प्रोग्राम बनाया। तो नेचुरली है, विदेश में कईयों के घरों में रहना पड़ा, खाना अपने हाथ से पकाना है, वो लोग कहे ठीक है आप अपना कुकर पकाते हो, हमारा भी साथ में पका दो, आटा बांधते हो हमारा भी साथ में बांध लो, आप अपनी रोटी बना लो हम फिर अपनी रोटी बनाएंगे, सब्जी बनाते हो सब्जी बना दो फिर हम खा लेंगे।
दीदी उस समय आपको दादी ने एक टाइटल दिया था,
वही तो
शेरनी शक्ति, वो उसके बारे में भी बता दो साथ में।
तो वही इसलिए अभी वो स्टोरी आती है। तो क्या हुआ कि कईयों के घरों में रहना पड़ा, और एक स्थान पर ऐसे हुआ भाई घर में आता क्लास में आता था, वो ज्ञान में पक्का हो गया, उसकी वाइफ नहीं आती। और अच्छा तो नहीं लगता है ना, जिसके घर में रहते हैं घरवाली ही नहीं आती है। तो मैंने दादी को लिखा के दादी ऐसी हालत है, तब दादी ने कहा तुम तो शेरनी हो, अकेली घूमती हो, हाथी है झुंड में घूमता है। तो ऐसे दादी हमको प्रेरणा देती थी, नहीं तो विदेश सेवा सहज नहीं होती थी। और शुरू में सेंटर शुरू करना डिफिकल्ट था। जब विदेश गए तभी भी बहुत धूमधाम से हमको छुट्टी दी, पांचों को, हम पांच गए थे, टावर ऑफ पीस के पास सभी ने, दादियां जो भी वहां थी, किसी ने फल दिया, किसी ने टोली दी, किसी ने जल छांटा, किसी ने तिलक दिया और गीत बजाया, भगवान तेरे घर का श्रृंगार जा रहा है। और जब आए तो भी दादी इतना प्यार से मिली, मतलब दादी का प्यार माँ का प्यार था, जो दादी के शरीर त्यागने बाद मधुबन वासी मिस करते थे कि हमें माँ मिस होती है। ओम शांति।
दीदी एक छोटा सा प्रश्न है कि मुरली के बीच में निर्मल आश्रम जो आता है, दीदी के लिए ही बाबा बोलते हैं, थोड़ा दो मिनट में बताएंगे? निर्मल आश्रम आपको बाबा बोलते थे ना?
क्या है कि बाबा की परख शक्ति बहुत अच्छी थी, हम ज्ञान में आते ही ब्रह्मा बाबा को पत्र लिखते थे। पहला पत्र कि मैं आपकी बच्ची बनी, एकाध मास के बाद फिर पत्र लिखते थे हमारे जीवन की कर्म कहानी, और हमने शादी की नहीं थी क्योंकि हमारा लक्ष्य था सेवा करनी है, और कभी किसी भाई के तरफ आकर्षण भी नहीं हुई। तो जब बाबा से मिली, जब बाबा की गोद में जाते हैं ना, तो बाबा को मालूम पड़ जाता है, या हम बाबा को मिलते ना, बाबा ऊपर से नीचे लेकर देखकर सोचता था ये क्या है, कैसे है, देह अभिमान है, देही अभिमानी है। तो बाबा ने देखा कि हमारे में प्योरिटी की शक्ति है, तो बाबा निर्मल आश्रम के।
थैंक यू दीदी। दीदी एक बहुत ही भाग्यशाली आत्मा है, क्योंकि हमने देखा प्रैक्टिकल अपने आंखों से, डायमंड हॉल में मुरली चल रही थी और मुरली चलते चलते बीच में बाबा रुके और दीदी को बुलाए। दीदी को भी समझ में नहीं आया क्या हो रहा है, तो दीदी ने पूछ के फिर दीदी को ही बुलाया। दीदी को बुला के बाबा ने अपना वरदानों भरा हाथ दीदी के सिर पे रखा। तो और ऐसी दीदी की पालना हम सबको मिल रही है, इसलिए सभी जोर से तालियों के साथ दीदी का सम्मान भी करें, थैंक यू भी करें। अब हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे।